الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعدم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
أعزائي المحترم سورة توبہ میں ارشاد رب العزت ہے اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ دو کام جو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو انجام دینے کے لیے بیان فرمائے ہیں یہ خداوند عالم کی اس نظام تربیت کا حصہ ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے یہ زمین و آسمان خلق فرمائے ہیں. پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان خدا کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ اگر پوری دنیا انسان کے لیے اور انسان خدا کے لیے تو پھر پوری دنیا کو مسخر کیا گیا ہے دست قدرت میں لینے کی صلاحیت کے ساتھ خداوند عالم نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. کوئی سوال ایسا نہیں جو آپ کے ذہن میں ابھرے مگر اس کا جواب موجود ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کی دوا پہلے سے اس نے خلق اور ایجاد نہ کی ہو مگر وہ بیماریاں جو انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشک و تر میں انسان کے اپنے برے اعمال کی برائیاں پھیل گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نئے نئے قسم کے گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر نظام قدرت نظام فطرت انسان کو نئے نئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. نظام قدرت بھی اور نظام فطرت بھی توجہ رکھے گا دونوں. چنانچہ انسان کو جو پیدا کیا تسخیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں انتہائی خوبصورت حدیث ملتی ہے مولانا آغا جعفر نقوی صاحب مرحوم رحمتہ اللہ علیہ آج سے کوئی تقریباً کوئی 25 سال پہلے یہ حدیث سنی ہوگی کہ انسان سمٹی ہوئی کائنات اور کائنات پھیلا ہوا انسان ہے. اگر اس کو یعنی علوم سائنس کے نگاہ سے دیکھا جائے تو انتہائی خوبصورت حدیث کہ اس سے بہتر انسان اور دنیا کی تاریخ ممکن نہیں. انسان سمٹی ہوئی کائنات اور کائنات پھیلا ہوا انسان یعنی انسان کو انلارج کیا جائے تو کائنات اور کائنات کو اگر مائکرو کیا جائے منی مائکرو تو وہ انسان کی صورت پڑے گا. دوسری بات یہ ہوئی کہ کونو مع الصادقین تو نظام تربیت کیا ہے انسانوں کو بھیجا جائے وہ تربیت پائیں اور اپنے کمال تک پہنچیں جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے. آج میں ایک قدر نئے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو معمولاً بہت کم سننے میں آتا ہے. کل یا پرسوں نقطہ میرے ذہن میں آیا, اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں الہام لے رہا ہوں عالم اسلام کے بہت ہی نظریہ پرداز شخصیت حجر اسلام علی رضا پناہیان کے, آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کی کلپس اور ترجمہ شدہ البتہ اور ان کی پوسٹیں وغیرہ دیکھی ہوں گی. یہ بحث انہوں نے اپنی کسی تقریر میں کی تھی, پوری تقریر تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ موضوع مجھے اچھا لگا تو چاہا تھا کہ اس میں گفتگو کی جائے, تو چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں اس کے کچھ خد و خال آپ کے سامنے بیان کر سکوں, آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس انسان کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کیا ہے, اور یہ بہترین انتظام احسن الخالقین نے احسن تقویم میں جب بھیجا تو پھر اس کے لیے وہ ہستیاں قرار دیں کہ جس کی تربیت خود اس نے فرمائی ہے. توجہ رکھیے گا, خود اس نے فرمائی. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں انا ادیب اللہ و علی ادیبی, میں اللہ کا تربیت کردہ ہوں. سرکار تجھے فخر محسوس کریں, مجھے اللہ نے تربیت دی ہے اور علی کو میں نے تربیت دی ہے, علی میری تربیت یافتہ ہے. بس اگر آج کوئی یہ کہیں کہ مثلا ہم علی جیسے ہیں, کچھ لوگ ہیں سر پہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں, تو میں کہتا ہوں کم سے کم تمہارا ٹیچر رسول جیسا ہونا چاہیے, کم سے کم تمہارا استاد رسول جیسا ہونا چاہیے, اس لیے کہ رسول کے ہاتھوں سے جو تربیت پائے گا اسے علی ولی کہا جاتا ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد آل محمد. کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا اس پہ بھی میں بہت سی جگہ گفتگو کر چکا ہوں, لیکن صرف یہاں پر ایک تعلق قائم کرنے کے لیے چند جملے مقدمتاً عرض کروں گا تاکہ میں اپنی بحث میں وارد ہو سکوں, زمینے کے طور پر اور زینے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں اس بحث کو. کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مع کا جو لفظ ہے, جیسے آپ جماعت میں جاتے ہیں کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, مولانا رک جائیے, یعنی اب مولانا طول دے دیتے ہیں. مع کا کیا مطلب ہے؟ وتھ, ساتھ. آپ کہتے ہیں نا اردو میں جب شادی کارڈ لکھا جاتا ہے کہتے ہیں بما اہل و عیال یا معا اہل و عیال, ما یعنی وتھ, وتھ کم یور وتھ یور فیملی ممبرس, اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں. یہ ماں کا کیا مطلب, یعنی ساتھ ہو جاؤ. یہ ساتھ ہونا اس کی کوئی ڈیوریشن ہے, کوئی فریم ہے کہ چار دن کے لیے, آٹھ ربیع الاول تک کے لیے, اکیس رمضان تک کے لیے, مثلا ایام اعظم یا ایام جشن سروب نہیں, ایک مطلق بات کی گئی بغیر کسی قید کے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی حکم میں کوئی قید نہیں ہوتی تو پھر اس کا معنی بھی وسیع لیا جاتا ہے. جیسے میں کہوں جو مہمان آئے اس کی احترام کرنا, اب جو مہمان کوئی بھی آئے, اپنا آئے, غیر آئے, مومن آئے, مسلم آئے, سنی آئے, شیعہ آئے, کوئی بھی آئے, آپ احترام واجب ہے. لیکن میں کہوں کہ نہیں, جو بھی مثلا کالے کپڑے پہن کر آئے اس کا احترام کرنا, اب میں نے قید لگا دی آنے میں نہیں بلکہ کالے کپڑے پہننے میں, یہاں مقید کر دیا میں نے حکم کو, تو پھر احترام بھی مقید ہو گیا, دائرہ بہت چھوٹا ہو گیا. لیکن میرے کہا جو بھی گھر پر آئے اس کا احترام کرنا, اب جو بھی آئے اس پر مثلا بیٹے پر واجب ہے کہ احترام کرے. کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کب ہو جاؤ, کتنے عرصے کے لیے ہو جاؤ, یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اور حسین کے رشتے کی نوعیت اور حساسیت کو واضح کر رہی ہے. ابھی آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا ایام عزا کے اختتام میں, الوداع یا حسین. یہ الوداع یا حسین قرآن کی آیت سے متصادم ہے, اس لیے کہ کہنے والا معذرت کے ساتھ سب نہیں, لیکن ایک فکر یہ ڈالی جا رہی ہے ایام عزا ختم ہو رہے ہیں, اب جیسے چاہے خوشی مناؤ, اور اب ایسے طریقے سے خوشی منائی جا رہی ہے کہ جس سے اہل بیت ناراض ہو رہے ہیں, یعنی اہل بیت کی ولادت کے دن, اہل بیت کی خوشی کے دن, اہل بیت کے میلاد کے دن, اہل بیت کی عید شجاع, عید زہرہ کے دن, امام زمانہ کی تاج پوشی کے دن, ایسے طریقے سے, ایسے میتھڈ سے خوشی منا رہے ہیں کہ جس سے امام اور جناب زہرہ ناراض ہو رہے ہیں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کتنے عرصے کے لیے نہیں معلوم, یعنی پوری زندگی تمہیں در حقیقت ولایت کے ساتھ رہنا ہے, ولایت کے ہم قدم رہنا ہے. اس حد تک ہم قدم رہنا ہے کہ اگر تم زینت اختیار کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ولایتی زینت ہو, نماز پڑھنا چاہتے ہو تو وہ بھی ولایتی نماز ہو. مثلا آپ अंगूठी पहनना चाहते हैं, रिंग पहनना चाहते हैं, कहाँ गया? कोई रिंग पहने कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ पत्थरों को मुस्तहब करार दिया, और जिन पत्थरों को मुस्तहब करार दिया उनमें एक अकीक है। अकीक वो पत्थर है कि जब दुनिया में अल्लाह ने विलायत अली पेश की थी तो इस पत्थर ने सबसे पहले मौला अली की विलायत को कबूल किया था। तो मोमिन के हाथ के आखिरी उंगली की जीनत अगर कोई पत्थर बने तो वो पत्थर बने जो अली की विलायत को कबूल करने वाला। मुझे तो इतनी ताकीद की जा रही, सिर्फ ये नहीं बल्कि मैं जो नमाज पढ़ूं, नमाज के लिए जो सजदेगा रखूं, वो करबला की विलायत की सरजमीन से हो, यानी मुझे विलायत से जोड़ा जा रहा है। तो फिर यहाँ अलविदा या हुसैन का माना अपने आप पूरा माना नहीं देगा, बल्कि वो नाकस माना देगा कि जो निज़ाम तरबियत खुदा चाह रहा है कुनु मअस्सादिकीन, उससे मुतसादिम नजर आ रहा है। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये कुनु मअस्सादिकीन यानी इमाम हुसैन के साथ होना, इसका वाज़े तरीन शक्ल और नमूना वो हमें अय्याम मुहर्रम में नज़र आता है। और ये इरफान की वो मंजिल है जो हुसैन इब्ने अली ने करबला के ज़रिए से हमारे काम में, हमारी दर हकीकत ज़ायक़े जान में इसका ज़ायक़ा डाला है। और ये वो इरफान की मंजिल है, ये वो इश्क की मंजिल है, ये वो इर्तिबात का आला तरीन मुकाम है कि जहाँ पर इंसान अपने महबूब के साथ हो जाता है तो फिर वहाँ पर वक्त की कोई कैद नहीं होती, बल्कि चाहता है कि वक्त थम जाए, वक्त रुक जाए, वक्त की पैरों में जंजीरें पड़ जाएं, मैं हूँ और महबूब का जलवा हो, मैं हूँ और तन्हाई हो, मैं हूँ और फिर महबूब की आंखों का दीदार हो। ये वो लम्हा होता है इरफान का, इश्क का। इरफान की बहुत सारी मंजिलें हैं, इनमें से एक मंजिल क्या है? महव कर देना, मिटा देना, अपने आप को गुम कर देना, जिसको उर्फा की ज़बान में फ़िना फिल्लाह कहा जाता है। फ़ना फिल्लाह यानी कौन? कि जब अली अकबर विदा होने को आ रहे हैं, अली अकबर जुदा होने को आए हैं, खुदा हाफजी के लिए आए हैं, बीवियाँ जुदा हो रही हैं, इमाम हुसैन को कहना पड़ा दाहुन्ना, अली अकबर को छोड़ दो, अली अकबर खुदा में फना हो गए, अली अकबर मजजूब हो गए, फना कर दिया अली अकबर ने इश्क इलाही में। हुसैन उस इश्क की मंजिल तक हमें लाना चाहते हैं। ये कुनु मअस्सादिकीन सिर्फ नजर नियाज तक नहीं होना चाहिए, ये कुनु मअस्सादिकीन सिर्फ बेटे की जॉब के लिए और बेटे की बेटी के रिश्ते के लिए और इंक्रीमेंट के लिए और दर्जे के लिए और मकान के लिए नहीं होना चाहिए। ये कुनु मअस्सादिकीन क्या है? यानी दुनिया और आखिरत में इरफान हुसैन के साथ ज़िंदगी बसर करना। और फिर ये वो मनाजिल हैं कि जिनकी तरबियत के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। या वजीहन इंदल्लाह इश्वालना इंदल्लाह, ये दुआ तवस्सुल क्या है? ये तवस्सुल सिर्फ मादी हाजात को इनके वसीले से लेना नहीं है। अगर मैं मादी हाजात को इनके वसीले से लूँ और बस दैट्स ऑल द एंड, तो इसका मतलब कि अहले बैत को मैंने सीढ़ी बनाया अपने मकाम दुनियावी के हुसूल के लिए, अपने अगराज मादी तक पहुंचने के लिए, अगर बात यहाँ तक हो। लेकिन हमें इससे बढ़कर एक और उसूल दिया तरबियत का, यानी हुसैन की क्लास इश्क का एक उसूल हमें ज़ियारतों में नज़र आता है। हमें अहले बैत चाहते हैं कि हमारा शिया तरबियत पाए इश्क हुसैन की क्लास में आए, ताकि ये भी हुसैन की तरह अपने माशूक की निगाहों में निगाहें डालने की लज्जत हासिल करे। हुसैन की अगर इश्क देखना है खुदा से तो फिर इमाम हुसैन की दुआए अरफा का मुताला कीजिए। हुसैन खुदाए हुसैन बज़बान हुसैन, अगर खुदा अगर अली का इश्क हमारी जबानों पर है लेकिन अली के खुदा को पहचानना चाहते हैं तो फिर अली की मस्जिद कूफा की मुनाजात को उठा के पढ़ें। मौलाया मौलाया अंतल मौला व अनल फकीर, अंतल अंतल मालिक व अनल ममलूक, अंतल बाकी व अनल साइल। अगर चाहते हैं कि मौला अली के खुदा का इरफान हासिल करें तो फिर हमें दर हकीकत दुआए कुमैल को अपना मतन ज़िंदगी करार देना होगा। एक वो टेक्स्ट होता है जो आप पढ़ते हैं, ज़िंदगी का टेक्स्ट क्या है? ये दुआएं हैं, अहले बैत की अहादीस हैं और वो ज़ियारतें हैं। एक ज़ियारत का जुमला मैं आपकी खिदमत पेश करूँ, मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी अहले बैत किस तरीके से हमें इस किला से इरफान व इश्क में वारिज करना चाहते हैं। एक वो इश्क है जो हम इस मजलिस के ज़रिए से सीख रहे हैं, ये गिरिया, ये बुका, ये आह, ये नाले, ये क्या इश्क है। आप थके हुए हैं लेकिन आप मजलिस करते हैं, आप साल भर प्लानिंग करते हैं फ़लाँ तारीख को मजलिस वफा करूँगा, प्लानिंग होती है इसका मतलब माल भी जमा करते हैं फिर मजलिस वफा करते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि हम तुम्हें 50 लाख देते हैं इस साल मजलिस न करो, आप क्या कहेंगे? दिल पे हाथ रख के सोचे, कसम खुद ये वो सवाल है, मैं पूछने नहीं जा रहा, अपने और इमाम हुसैन के दरमियान। अगर कोई इमाम हुसैन आके कहें कि ऐ जवान तू मेरा मातम कर रहा है इस साल मेरा मातम न कर, फलाने तुझे पैसा दे रहा है, आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे नहीं, ये हाथ अगर सीना बना है तो हुसैन के मातम के लिए बना है। कोई कहे कि इस साल गिरिया ना करो हुसैन पर, हम तुम्हें इतना 1000 रुपया देंगे, मुमकिन नहीं है। ये आंखें हो मुहर्रम आए फर्श अदा बेचो हुसैन पे गिरिया ना हो, तवज्जो रखिएगा। तो कोई आप सफर करबला जाने वाले हो, कोई कहेगा देखो हम तुम्हें इतना इंक्रीमेंट दे देंगे, इतना फ़ायदा दे देंगे, इतना बोनस लगा देंगे, ना जाओ। कौन है जो उस माती मुनाफे को अख्तियार करके हुसैन की ज्यादा? यह है इरफान, यह है इश्क, यह है फना, यह है तस्लीम। यानी इमाम हुसैन ने आला तरीन मतालिब को कि जिसको आम इरफान की दुनिया में इश्क के मकतब में जो सालों बैठ के सीखता है अपने दिल और नफ्स को मार कर अपनी ख्वाहिशात को अकल की जंजीरें डाल कर असीर बना कर उस मुकाम तस्लीम व फना व इरफान में पहुंचता है, हुसैन ने अपने फर्श अदा के जरिए से तुम्हें अदा कर दिया बहुत सादे तरीके से। यानी कहा कि मुझ तक आओ मैं खुदा तक पहुंचाने वाला हूं। बुखल नहीं है इमाम हुसैन में कि अपनी जात तक रोक दें, तवज्जो रखिएगा। यानी जो हुसैन तक आ जाए वो खुदा तक आ सकता है, बहुत आसान कर दिया, बहुत ईजी कर दिया हुसैन ने। यानी कहा कि वो जो तुम सुनते हो इरफान की क्लास, मकतब इश्क की क्लास, वो तुम्हें मैं फर्श अदा बता रहा हूँ, यही फर्श अदा तुम्हें मुकाम तस्लीम व फना तक पहुँचा देगा। लिहाजा अब ये वो उसूल और राज और सिर थे कि जो इस फर्श अदा से वाबस्ता थे। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है कि देख रहा हूँ मैं मोमिनीन की आंखों में आंसू हैं, ये इश्क के आंसू हैं, ये इरफान के आंसू हैं। हमारी मामूलन जब फर्श अदा बिछाया जाता था तो सफ़ेद चांदनी बिछाई जाती थी। ये सफ़ेद चांदनी का क्या तसव्वुर है? मैंने किसी मौके पर ये जो जितनी भी चीज़ें हमारी यहाँ हमारे आबा अजदाद ने दी हैं कि मिंबर ऊंचा क्यों होना चाहिए, अलम क्यों होना चाहिए, अलम का पंजा क्यों होना चाहिए, साहिब ब्याज ऊंचा क्यों खड़ा हो, ये सारी चीज़ें मैंने गुफ्तगू हुई थी, उनमें से एक थी कि ये चांदनी जो है ये क्यों बिछाई जाती है, सफ़ेद चादर जिसको आप कहते हैं, इसलिए थी अगर कोई आलूदा पैंट लेकर आए और वहाँ से चलना शुरू हो यहाँ तक आए तो क्या है उसके आलूदा पैर के निशाना बन जाएंगे। यानी वो मजबूर होगा कि अपने पैरों को तस्वीर के बाद फर्श अदा पर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैर की गंदगी फर्श अदा की सफ़ेद चांदनी नूर वाली चादर को आलूदा कर दे। वो क्या है, वो क्या है, मजबूर होगा कि अपने पैर धोए तवज्जो रखिएगा। क्यों? क्योंकि फर्श अदा आलूदा ना हो। यानी हमारे आबा अजदाद ने इरफान व इश्क को नूर को इन चीज़ों के ज़रिए से हमारे जहन व कल्ब में डालने की कोशिश की। ये चांदनी है, कि जो धुल जाएगी, लेकिन दर हकीकत तुम जिस राह पे चल रही हो वह गुनाहों के कदमों के साथ चला नहीं जा सकता। जिस राह तुम तौबा कर रहे हो तो आंखों की तौबा होती है, कानों की तौबा होती है, जबान की तौबा होती है, हाथ की तौबा होती है। तो हुसैन के रास्ते पर सबसे पहले कदमों की तौबा करो ताकि तुम्हारा चलना होड़ की तरह चलना बन जाए। यह है वो राज जो इस इश्क में पोशीदा है। तो ये वो तस्लीम की मंजिल थी कि तस्लीम हो जाओ, पैसा दे, गिरिया ना करो, कभी नहीं मानेंगे। ये क्या है? ये वो तस्लीम होना है, ये वफा है कि हम जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं कि अज़ादारी करें, जहाँ तक होता है फर्श अदा बिछाते हैं, कोई नोहा पढ़ता है, कोई सलाम पढ़ता है। जैसा अभी ये नौजवान बच्चा बहुत अच्छा सलाम पढ़ रहा था अदायगी के साथ। तो हर शख्स अपना हिस्सा डालना चाहता है। ये आहिस्ता आहिस्ता हमें क्या कर रहा है? क़ुर्बतन इलल हुसैन की मंजिल पे ला रहा है। ये फर्ज अदा बिच गया, मंजर साहब ने ऐलान कर दिया मेरे घर में मजलिस है, कोई ओल्ड रिजिया से आ रहा है, कोई कहीं और से आ रहा है, मैं अभी मजलिस पढ़ के पटेल वीर से आ रहा हूँ। ये सब जो कदम उठ रहे हैं क़ुर्बतन इलल हुसैन उठ रहे हैं, क़ुर्बतन इला इमाम ज़माना उठ रहे हैं, क़ुर्बतन सैयदा कायनात शहजादी कौन है सलामुल्लाह अलैहा उठ रहे हैं। जो करीब हो गया इनके वो खुदा से करीब, यहाँ से अब खुदा तक का फासला बहुत दूर नहीं है। वो अन्नर्राहिला इलैक करीबुल मुसाफा, इमाम सज्जाद क्या कहते हैं, खुदा तुझ तक पहुंचने का रास्ता बहुत इजी है, बहुत आसान है, शॉर्टकट है, बहुत करीब है खुदा। यानी अहले बैत कह रहे हम तक आ जाओ हम खुदा तक पहुंचा देंगे, बल्कि यूं कहूं जो अली तक आ गया वो खुदा तक आ गया। फर्क नहीं है, दोइयत नहीं है। तब जो रखेगा मैं तौहीद के तमाम तर मतालिब और मदारिज को सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ, दोइयत तो नहीं है। इरफान अली में, इरफान खुदा में जो अली तक आ गया वो खुदा तक आ गया, वो खुदा तक पहुंच गया। इसलिए कि अली कुछ नहीं है सिवाय जलवा इलाही व नूर इलाही के। ये जलवा जब अली के पैकर में आता है तो अगर हम खुदा को पहचानना चाहें कि खुदा करीम कैसा है तो हसन मुश्तबा को देखते हैं। खुदा दर हकीकत अपनी आंखों से अगर देखना चाहे तो उसकी आंखें क्या काम करती हैं तो अली को ऐनुल्लाह कह देते हैं, अली के हाथों को लिसानुल्लाह कह देते हैं, अली की जबान को लिसानुल्लाह कह देते हैं, कि मुकम्मल तौर पे ढल जाते हैं। जब ये जब नूर इलाही में ढल जाता है, ये मजहरे सिफात इलाही हो जाते हैं। जब मजहरे सिफात इलाही हो जाते हैं तो फिर इनको देखकर खुदा को देखना होता है। ये मसाले आला बन जाते, अंतुम मसालुल आला, तुम अल्लाह की बेहतरीन मिसाल और वो शबी हो कि जिनके जरिए से अल्लाह को पहचाना जाता है। अल्लाह का अक्स नहीं है, अल्लाह का साया नहीं है, अल्लाह का जिस्म नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह इस दुनिया में पहचाना जाएगा तो इन मजहरे सिफात इलाही के जरिए से पहचाना जाएगा। मिलकर दुरूद थे मोहम्मद आल मोहम्मद। यहाँ पे कुछ असरात होते हैं जो गुलू के शिकार हो जाते हैं। बहरहाल मैं उससे बचते हुए तो जो इरफान नाब इरफान खालिस है कि जो इन तक पहुँच जाए वो खुदा तक पहुँच जाता है। वरना राहिला करीब मुसाफा, तुझ तक पहुँचने का रास्ता, आसान तरीन रास्ता इमाम हुसैन ने दे। अपना माल खर्च करो, माल की मोहब्बत निकालो, माल की मोहब्बत निकालो। कैसे निकालें? मौला की राह में खर्च करो। अब आप देखिए कैसे हमें तरगीब दिलाई माल खर्च करने की। रोज़े आशूर मजलिस से हम मुनाफिक करते हैं, खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के लिए मजलिस में रिवायत नहीं है। 22 रजब के कूड़े करते हैं, रिवायत नहीं मासूम की 22 रजब के कूड़े करो खाना खिलाओ। आप करें कोई हर्ज नहीं, सब आपका काम है, लेकिन एक दिन खाना खिलाने की रिवायत मौजूद है और वह है मेरे मौला की विलायत के दिन, ईद गदीर के दिन। खाना खिलाओ, दस्तरखान बिछाओ, मोमिनीन को दावत दो दुनिया के लिए इंसान का गरजदार बनता है, लोन लेता है घर के लिए, गाड़ी के लिए, फलन के लिए, तुम अली के गरजदार बन जाओ, ये दुनिया और आखिरत से बेहतर है। मैं अपने मौके अर्ज करूँ, अगर आप नियत करें अभी बैठ कर कि खुदा अगले साल 10,000 खर्च करूँगा ईद गदीर के दिन, मोमिन खाना खिलाऊंगा, खुशी मनाऊंगा, अगले साल उसका 10 गुना आपको मिलेगा। अगले साल तो बहुत दूर की बात है, मैं अपना एक वाक्य शेयर करूँ आपसे, मिली दूर में जी मोहम्मद वाला इस साल ईद गदीर के दिन मैंने अहद किया कि मैं कोई माल खर्च करूँगा, मुझे उम्मीद थी कि शाम में कुछ पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा, उम्मीद थी, वो यकीन सूरत हाल नहीं थी, अच्छा 50-50 भी रख ले, मैंने कुछ पैसा कर्ज ले लिया और कर्ज लेकर उसका खाना कहीं तकसीम करवा दिया। इसमें रिया नहीं कर रहा हूँ, अपना वाक्य शेयर करना चाह रहा हूँ। आप यकीन करें कि जितना मैंने खर्च किया था उससे 10 गुना ज़्यादा मौला ने शाम को मेरे घर पहुँचा दिया। अली के किसी का कर्ज नहीं लगता, अली के कर्जदार बन जाए ये ज़्यादा बेहतर है। माल खर्च करो, अपना वक्त बहुत कीमती होता है, नौजवानों का स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन मजलिस के लिए वक्त निकालो, यानी माल हो, वक्त हो, सलाहियत हो। अभी क्या है, ये बच्चा आके पढ़ रहा है, वो ये अपनी सलाहियत खर्च कर रहा है, ये अपनी सलाहियत दे रहा है लोगों को, ये अपनी आवाज़ बता रहा है, कोई खतीब होता है, कोई जाकिर होता है, कोई नौखान होता है, हर शख्स खर्च कर रहा है जो उसके पास अजीज तरीन चीज़ है, कोई माल दे रहा है, कोई वक्त दे रहा है, कोई अपनी सलाहियत दे रहा है। यही वो चीज़ है जो हमें इमाम ज़माना से जोड़ रही है कि अपनी कीमती तरीन चीज़ को खर्च करने की आदत डालो अपने इमाम असर के लिए। तुम IT की शोबे से हो, तुम ग्राफिक्स के हो, तुम्हें एडिटिंग आती है, तुम म्यूजिशियन हो, कोई भी शोबा हो तुम्हारा, कोई भी शोबा हो, ये देखो कि तुम अपने इमाम ज़माने के लिए क्या करो। एडिटिंग आती एडिटिंग करो, फोटोग्राफी आती फोटोग्राफी करो, पेंटिंग आती पेंटिंग करो, यानी अपने ही आर्ट से, अपने ही फन से, अपने ही स्किल और सलाहियत से अपने आप को तैयार करो इमाम के लिए, जिसको रिवायत में दो तरह बयान किया है, अपने इमाम के लिए एक तीर रखो और अपने इमाम के लिए घोड़ा रखो। और घोड़ा क्या चीज़, मैं घोड़ा रखूँ आज, मैं तीर रखूँ, नहीं, यानी कोई भी ऐसी स्किल, सलाहियत, काबिलियत कि जो नशो नुमा पा सके, जो रिजल्ट दे सके, जो ग्रोथ कर सके माशरे में, वो रखो और उसको खर्च करो इमाम के लिए। तुम्हें एडिटिंग की सलाहियत है एडिटिंग करो, मिक्सिंग की सलाहियत है मिक्सिंग करो। मसलन हमारे ही मोहल्ले के कुछ नौजवानों ने इनतहाई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई कोरोना के ऊपर कि एक नौजवान जो है वो कोरोना की खिदमत करते करते इस दुनिया से चला जाता है। बहरहाल वो एक नौजवान था, अब बादशाह का आपको याद होगा, हसन रजा शहीद स्काउट, जिसने अपनी जान दे दी, तकरीबन उस पर वो फिल्म बनाई गई थी। तो कहने का मकसद ये कि वो आर्ट था, उन्होंने जब मैंने देखा बहुत अप्रिशिएट किया, मैंने कहा बहुत अच्छा है, इसको मज़ीद तुम इसको कंटिन्यू करो ताकि जो है ये तुम्हारा जो आर्ट है, फ़न है, स्किल है तुम्हारी, ये इमाम ज़माना के लिए। यही चीज़ हमें फरशादा इमाम ज़माने से जोड़ रही है कि मैं खर्च करूं अपनी आवाज़ को, अपने वक्त को, अपने माल को, जो कुछ भी मेरे पास है, माँ इंदी जो कुछ भी मेरे पास है, ताकि मैं दर हकीकत जब हुसैन तक पहुँचा हूँ तो इस वक्त जो मेरे ज़माने का इमाम है मैं अपने आप को उससे जोड़ूँ, ताकि मेरा हर हर अमल, मेरा हर हर एक्शन, मेरी हर हर अदा, मेरा हर हर फेल उस पर इमाम ज़माना की विलायत की मोहर लग जाए। मेरे गुरु ने जी मोहम्मद तो अहले बैत फर्श अज़ा के ज़रिए से इरफान की मनाजिर को बहुत आसान कर दिया है। तस्लीम होना, वफा, ये सब इरफान की आला तली मनाजिर, इसमें बड़ी गुफ्तगू है। मसलन बेदारी, इरफान की पहली मंजिल को बेदारी कहा जाता है, या कज़ा जिसे कहा जाता है, जिसको मौला ने कहा अन्नासो, लोग सो रहे, इधर माँ तो इंतम, कब जागेंगे, जब मरेंगे। अगर मैं और आप जो अभी सांस ले रहे हैं, जिन्हें हमें जिंदा कहा जा रहा है, ये जिंदा हैं, ये लाइव हैं, ये हाई हैं, ये चल फिर रहे हैं अपनी मर्जी से, मुर्दा क्यों मुर्दा है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर, सांस नहीं ले सकता, मैं अपनी मर्जी से चल फिर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मौला अली कह रहे नहीं, अगर तुम्हें एक चीज़ नहीं है तो तुम मुर्दा हो, علوی نگاہ سے ہم مرتے ہیں. کب؟ کہ جب بیداری نہ ہو, فکر بیداری نہ ہو. بیداری یعنی میں بیدار ہوں, اپنا ہاتھ ہلا سکتا ہوں. اب آپ سو رہے ہیں, سوتے میں اگر کوئی کسی کو مار دے, ہاتھ مار دے, اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ سوتے میں کچھ, سوتے میں کسی کو کچھ نازیبہ کلمات ادا کر دے, مواخذہ نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ سوتے میں تو اپنے اختیار میں نہیں تھا. تم جاگ رہے ہو تو بیداری کا ثبوت ہو. بیداری کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ تمہاری فکر صحیح ڈائریکشن میں, صحیح وے میں, صحیح ڈائریکشن میں حرکت کرنی چاہیے. تمہاری اسکلز, تمہاری صلاحیتیں, تمہاری سانس, تمہارا ہر قدم, اس لیے کہا یہ تمہارا ہر قدم اور تمہاری ہر سانس تمہیں جنت سے قریب کر رہی ہے, جہنم سے قریب کر رہا ہے. اب اس سے زیادہ فوکس لائف کا تصور ہمیں کہیں اور نہیں ملے گا سوائے مکتب اہل بیت کے. اس سے زیادہ فوکس لائف اور فلاسفی آف لائف آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے مکتب اہل بیت کے. یہ تمہارا ہر قدم یہ جنت سے قریب کر رہا ہے, جہنم سے. یعنی پورا فلسفہ زندگی مولانا نے بتا دیا, پورا نظام زندگی بتا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں امام سے جڑنا ہے. اہل بیت نے چاہا کہ ہم اس منزل تک آئیں, یعنی جو حسین تک آ جائے, حسین پھر بخل نہیں کریں گے نعوذ باللہ, وہ خدا تک پہنچائیں گے, خدا تک پہنچائیں گے. مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ میدان میں نکلے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے مثلا, خدا بارش برسا دے, بارش برسا دے. ایک شخص جو یہ بیان کر رہا ہے کہتا ہے کنارے پہ ایک نارمل سا سادے لباس میں 20-25 سال کا ایک نوجوان کھڑا تھا, اس نے ہاتھ اٹھائے, خدا بندہ مدینے والے پریشان ہیں, دعا کرتا ہوں ان کے لیے بارش برسا دے. کتنے لوگ رو رہے ہیں, پریشان ہیں, بہت ساری ہے. کہتے ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ کالے بادل ایسی بارش ہوئی علامہ والی, میں نے دیکھا یہ تو کوئی ولی اللہ ہے, یہ تو کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے, کوئی بزرگ ہے. دیکھو تو 20-25 سال کا نوجوان. اب وہ کہیں وہ چلا, میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گلیوں سے گھومتا ہوا, یہ امام سجاد کے گھر میں چلا گیا. امام سجاد کے گھر میں گیا, میں نے دخل باب کیا, مولا میں آپ کے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا نے بلا لیا اپنے جتنے غلام تھے سب کو, دیکھا کہا کہ نہیں کوئی اور بھی ہے. ہم نے کہا ہاں ایک اور ہے, وہ تھوڑا سا بیمار ہے. مولا اس کو بلائیے. اب اس کو بلایا تو اس نے کہا ہاں میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. امام نے کہا تم جاؤ گے اس کے پاس؟ تو اس نے کہا آخر وجہ کیا ہے, میں سیدھا سادہ سا ایک نوجوان ہوں, اتنے اچھے اچھے غلام ہیں ان میں, یہ اس کے لیے صلاحیت ہے, تم ان کو چھوڑ کر مجھے کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے خرید کر آزاد کر کے تیرا غلام ہونا چاہتا ہوں. اب یہ اور پریشان کیا وجہ ہے, کہا کہ میں نے تیری دعا کا نتیجہ دیکھ لیا, تو پہنچا ہوا انسان, تو ولی اللہ. اب آپ دیکھیں امام کا تربیت یافتہ کس منزل پر ہے. امام نے پوری زندگی 20,000 غلاموں کو خرید کر تربیت کر کے آزاد کیا. 20,000 غلاموں کو تربیت کرتے تھے. امام رضا نے اپنے بھائی شاہ چراغ جو شیراز میں ہیں ان کو حکم دیا غلام خریدو, تربیت کرو, آزاد کرو. اس زمانے میں اہل بیت اس طریقے سے تربیت کر رہے تھے. یعنی امام کا تربیت یافتہ ایک نوجوان 20-25 سال, آج 20-25 سال کا نوجوان دیکھیں وہ کیا کر رہا ہوتا, اس کی کیا تھنکنگ ہوتی, کیا تھاٹس ہوتی ہیں, وہ کیا اس کے ایم ہوں گے, کیا ڈریم ہوں گے, اس کے آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ اس منزل کو, یعنی جو امام تک پہنچ جائے, یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں, ایسے کئی واقعات ہیں. تو پھر امام اسے خدا سے متصل کر, جو امام سے متصل ہو گیا وہ خدا سے متصل. میں کی درود لیجیے محمد وال محمد. اب یہ تو تھا وہ کہ جو ائمہ نے ہمیں فرش ازا سے وابستہ کیا ہے. اب ایک اور میتھڈ دیا ہماری تربیت کے لیے. میری نوجوان دوستوں سے درخواست ہے, موبائل آپ کے پاس ہے, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے, یہ خطبات ہیں اہل بیت کے, خطبہ غدیر, خطبہ فدر, خطبہ جناب زینب, خطبہ امام سجاد, خطبہ غدیر, ان کا مطالعہ کریں, فرض سمجھیں. اور یعنی حیف ہے, افسوس ہے ایک نوجوان کے لیے الا بلا ڈائجسٹ, یہ وہ واٹس اپ, یہ ویب سائٹ, وہ ویب سائٹ, اور آپ کا تو اسنیپ چیٹ تھا, اس نے ستیہ ناس کیا ہوا ہے نوجوانوں کا, معذرت کے ساتھ لگایا ہوا ہے, پھنسایا ہوا ہے دجالی میڈیا نے کہ کس طرح نوجوان کیپچر ہو جائے, اس کو سوچنے کی فکر نہ ملے. इसको समझने की फिक्र ना मिली। इस तरह वो स्टिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं स्नैपचैट में जो भेजी जाती है, कोई है इस किस्म की कोई एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कीजिए स्टिक्स करके कोई है कि जो आप एक दूसरे को भेजते हैं लगा के रखते हैं, आप लगे रहें बस कोई भी चीज़ उठा के भेज रहे, हर चीज़ की तस्वीर उठा के भेज दो, यानी आपको मसरूफ रख रहे हैं। यानी वो काम जो विलायत को करना चाहिए था और हमें विलायत से जोड़ना चाहिए था, वो काम जो है वो दुश्मन कर रहा है और उससे मजमूम मकासद अपने पूरे कर रहा है। तो हमारी पूरी नौजवान नस्ल को उसमें लगाया हुआ है। तो अर्ज कर रहा था कि अहले बैत ने मेथड दिया है, एक और रविश दी है कि देखो तुम्हें एक तरीके से हम फर्श अदा से करीब करेंगे, एक और है वो है ज़ियारतें, वह खुतबात, वह दुआएं। हमारी बदबख्ती यह है कि हम हदीसे के साथ पढ़ के रख देते, हदीसे के साथ पढ़ने के लिए नहीं होती, हदीसे के साथ अमल के लिए होती है। जुमला कह के अदूत हो जाऊँ, मेरे घर में बरकत कब आएगी हदीसे के साथ से? जब माँ बाप बच्चे को उठकर सुबह सलाम करे, बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। जब शौहर उठकर बीवी को, बीवी सुबह उठकर शौहर को सलाम करें, तब बरकत आई। हदीस से दो दो की पिले हम जी, आपने डिस्पेंसर में लगा लें पानी डाल के, बरकत नहीं आएगी। बरकत कब आएगी? जो अली और फातिमा के घर में हो रहा है, जब मेरे घर में होगा तो बरकत आएगी। दूर देखिए मोहम्मद اللهم اجعلني اخدا مجھے سبات قدم عطا فرما فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی حسین کے ساتھ آخرت میں بھی حسین کے ساتھ۔ توجہ ہے، یعنی مؤمن کونو مع الصادقین کیا ہے؟ 8 ربیع الاول تک نہیں، 21 رمضان تک نہیں، 18 رمضان تک، یا مثلا ایام جشن آ رہے ہیں 3-4 شعبان ولادت کے، چلو جی مولا کے ساتھ ہو جائیں، نہیں، دل دینے والے بنو۔ ये दिलबर हैं, ये दिलदार हैं, इनको दिल देने वाले बनो। जब दिल देने वाले बनोगे तो फिर जो दिल लौटाएंगे वो तुम्हें ऐसा दिल होगा कि दुनिया में जहां जाओगे इन्हीं के होकर रह जाओगे, इन्हीं के होकर। आखिर में एक और अर्ज करूंगा और मसाइल की तरफ आ रहा हूं, तो वो क्या है, मुझे सिफात कदम अता फरमा। ये है कुनुमासद, ये है इरफान दुनिया में हुसैन के साथ, आखरत में हुसैन के साथ। पानी पियो तो क्या कहो, इन्हें हुसैन की प्यास है। इंसान 20 बार तो पानी पीता है ना, इन्हें 20 बार हुसैन से रूहानी और रिश्ता, स्पिरिचुअल तुम्हारा एक कनेक्शन होना चाहिए। 5 बार नमाज में मुहर करबला तुरबत करबला रखो, 5 बार हुसैन के जरिए से खुदा से जुड़ जाओ। हदीस में जो असल खाक शेवा पे सजदा करता है उसके सामने से जितने पर्दे होते हैं वो सवाड़ जाते हैं। ये किसी वलीउल्लाह के लिए नहीं कहा है, जो भी असल खाक शेवा पे नमाज, ये खाक शेवा की खासियत यह है कि तारीकियों को जहन और कल्ब से दूर कर देती है। बस इस बिना पर हमें हुक्म दिया ज़ियारत पढ़ें। फिर ज़ियारत क्या है, इश्क नामा है, इश्क नामा है। हम दिल देने वाले बने, ये दिलदार हैं, ये दिल रुबा हैं, ये दिल को सैकल करने वाले हैं, ऐसे सैकल करने वाले कि फिर जो इनका हो जाता है वो फिर दुनिया में किसी और के दरवाजे पर नहीं जाता। अल्लाहुम्म सब्बित मुझसे फिर दुनिया होता। ये दुआ करके खुदा मरते दम तक इस घराने से वाबस्ता रहने की तौफीक दे, अमली लिहाज से प्रैक्टिकली, ताकि हम अज़ली गिरामी दुनिया में भी हुसैन के साथ, आखिर में भी हुसैन के साथ। इसलिए हुसैन के साथ होना ये बहुत कमाल का काम है। इमाम एक सहाबी है, शहीद हुआ इमाम के सामने, औफ़ई तो मौला मैंने अपना हक अदा किया, वफा की मैंने, इमाम ने कहा तूने हक अदा किया। अब इमाम का जुमला सुने, इमाम कहते हैं अंत अमामी फिल जन्ना, तू मेरे जवार में नहीं होगा, तेरा तू मेरे पड़ोस में नहीं होगा, तवज्जो रखिएगा, तू मेरे सामने होगा। तसव्वुर कर सकते हुसैन के सामने होना, हुसैन की निगाहों के सामने होना। होता है ना इश्कबाजी होती है, महबूब मुझे एक नज़र देख ले, एक नज़र, एक एसएमएस दे दे, एक पैगाम दे दे, सारी जिंदगी अगर कुछ न दे, एक पैगाम को दिल से लगा के रखता है, वो मेरे महबूब ने भेजा है, मेरे महबूब ने देखा है, तवज्जो रखे, उन घड़ियों को याद रखता है इंसान। इमाम कह रहे आओ मैं तुम्हें ऐसा महबूब बनाऊंगा, अंत अमामी फिल जन्ना, तुम मेरे सामने होगे। शर्त क्या है? इस्तकामत। शर्त क्या है? वफा। शर्त क्या है? सिबात कदम अदा करना। तो दुआ करें, ये फर्श अज़ा, ये कबूलियत की वो मंजिल है कि जहाँ पर अपना दिल हुसैन को दे देते हैं। फिर दुआ करें हुसैन से और हुसैन के खुदा से, आइया में ऐसा ख़त्म हो रहे हैं। लिहाजा अपनी इस अज़ा को, इस गिरिए को अपने इमाम वक्त की खिदमत पेश कर। मौला ये गिरिया है, ये अज़ा है, ये पुकार है, ये प्यादा रबी है, ये सबीर लगाई थी, ये माता भी था, ये नौ पड़ा था, मौला इस पर मोहर तस्दीक सब कर दे। मौला की विलायत की मोहर होगी अज़ा निगरानी, हमारी अज़ा कबूल हो जाएगी। और जिसकी अज़ा कबूल हो जाए, यानी वो हुसैनी बन गया, और जो हुसैनी बन गया वो मुअस्सर अदीब के तहत खुदा भला बन गया। हुसैन खुदा तक पहुँचाना चाहते हैं, हुसैन बाबुल्लाह हैं। ऐन ऐन المتصل بين الارض والسماء ऐन बाबुल्लाह الذي منه يؤتى, कहाँ है वो दरवाज़ा है खुदा कि जहाँ से खुदा अता करता है, कहाँ है वो वास्ता फैज़ बैन ज़मीन व समा, वो कौन है? आज इमाम सवाल में है। बस अज़ा डालो, आपने गिरिया किया, आपने सिर्फ मातम बिछाया, आपने इंशाल्लाह जो बाकी मादा दिन रह गए हैं, कोशिश करें कि इमाम समाना को याद रखें, दुआ के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से, सत्य के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से, हत्ता के बाज़ उलमा ने कहा सुबह जो रिस्क के तकसीम होने का वक्त है, यानी अजान फजर से लेकर तुलू आफ्ताब का, इसमें कोशिश करें रोज़ाना एक तस्बीह खालिसतन इमाम ज़माना के लिए। क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़र्ज। मौला ये 100 मरतबा हदिया दे रहा हूँ आपको, या जब तोहफ़ा देंगे अपने हिसाब से आप तोहफ़ा दे रहे हैं, जब इमाम तोहफ़ा देगा तो अपने हिसाब से देगा। जब आप सलाम करेंगे अस्सलाम अलैका या साहिब ज़मान, आप अपने स्टेटस अपनी मार्फत के मुताबिक, जब इमाम के वालेकुम सलाम ए जवान ए मोमिन ए मोमिना तुझको भी सलाम हो, तो वहाँ से जो सलाम आएगा वो फिर रद्द होने वाला नहीं है, इसलिए उसके पीछे पूरी खुदाई होगी। बस कोशिश करें ये आंखें कभी खुश ना हो, कोशिश करें ये जबानें कभी नुकरत का शिकार ना हो। या हुसैन कहें, या ज़हरा कहें, या इमाम साहिबुज़्ज़मान कहें। बस अज़ादार अहले बैत ने यही सिखाया है कि आओ करबला के फर्श पे आ जाओ, हम तुम्हें मकतब वकीला से इश्क से आगाह भी करेंगे, तैयार भी करेंगे और तुम्हें करीब भी करेंगे। हुसैन ने किला से इश्क सजा दी, मकतब इश्क बिछा दिया, कायम कर दिया, और ये हमें इमाम ज़माना से करीब कर रहा है। अज़ादारो ये वो अय्याम हैं कि अय्याम शहादत इमाम रज़ा भी गुजरे हैं, अय्याम शहादत से इमाम हसन भी गुजरा है। मैं शुरू करना चाहता हूँ उन मसाइल से जो इमाम हसन ने बर्दाश्त किए, और चंद जुमले आखिर में करबला से मुतअल्लिक़ एक साकिर के ख्वाब में इमाम हसन अलैहिस्सलाम आते हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं कि तू हमारे मसाइल नहीं पढ़ता, हाथ जोड़ के कहते हैं मौला मैं आपके मसाइल पढ़ता हूँ। मदीने में आप ऊपर जो हमला हुआ, जो जहर दिया, सब पढ़ता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि तुझे नहीं पता हमारे असल मसाइल क्या है। मौला बताइए आपके असल मसाइल क्या है? कहा कि हमारे असल मसाइल वो हैं कि जब बाप के गले में रस्सी बांध कर मस्जिद ले जाया जा रहा था, जब उसी गली में माँ पर हाथ उठाया जा रहा था, अल्लाह, कोई अपने पैर से जसारत कर रहा था मेरी माँ के सामने, कोई हाथ उठाकर, कोई तलवार कर नियाम उठा। इमाम हसन के मसाइल ये है, और शायद यही वजह है कि हसन ने देखा था कि माँ पे हाथ उठाया जा रहा है, और जनाब ज़हरा ने शायद ये कहा हसन बेटा जो कुछ गली में देखा है अपने बाबा से मत कहना, इसलिए कि अली के मसाइब बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है इमाम हसन ने जिंदगी भर उस मुसीबत का तस्करा नहीं किया जो अपनी आंखों से देखा था कि माँ पे हाथ उठाया जा रहा है। और यही वजह है कि इमाम हसन उस गली से नहीं गुजरते थे, इसलिए कहते थे मेरी माँ का कातिल इस गली में रहता है, अरे मैं कैसे गुजर जाऊं यहाँ से, यहाँ मेरी माँ पे हाथ उठाया गया। अजरकुम अल्लाह। और अजीज ने कहा ये जो खून की उल्टी हुई है ना, ये सिर्फ जहर की वजह से नहीं हुई है, ये वो खून जिगर है जो हसन ने सालों पिया था, ये वो खून जिगर है जो हसन ने देखा था मेरी माँ पे जो हाथ उठाया जा रहा है। अल्लाह मजलिस ने लिखा है कि जनाब ज़हरा आखिर वक्त तक एक दुपट्टा बांध के रखती थी, सर में शदीद दर्द होता था, तो अल्लाह मजलिस ने लिखा है गली में किसी लईम ने हाथ उठाया था जनाब ज़हरा पर कि जनाब ज़हरा का गोशवारा कान में टूट गया था, अरे बीवी जब तक जिंदा रही। अल्लाहु अकबर। और सिर्फ यही नहीं, उस तमाचे का निशा गाल पर था, यही वजह है बीबी जब अली के सामने आती थी अपनी चादर को आगे कर लेती थी मबाद अली की निगाह न पड़ जाए। अजरकुम अल्लाह। हाँ हसन ने खून जिगर पिया था जो कलेजे के कट कट कटने की सूरत में ओ गिर रहा था दश्त में, बस अदादारो बस अदादारो, ये है जहरा के मसाए, ये है जहरा के मसाए। भाई मदीने में और करबला में कुछ मुमासलत हैं, पहली मुमासलत मदीने में और करबला में ये है कि तमाचे मारे जा रहे थे, अरे यहाँ पर बच्चों के सामने माँ को मारा जा रहा था और वहां पर माँ के सामने बच्चों को मारा जा रहा था। किसी ने बयान किया है जन शोहर में कुछ ना इत्तेफाकी हो गई, बीवी रोती हुई आई, कहा कि देखें आप मेरे शोहर हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन कोशिश करें बच्चों के सामने मुझे कुछ ना कहा करें, मेरी शख्सियत खत्म हो जाती है। हाय कोई जहरा के दिल से पूछे, जब जलता हुआ दरवाजा गिर रहा था, जब गली में जहरा पे हाथ उठ रहा था, अरे ये बच्चे देख रहे थे या रसूल अल्लाह, ये वो जहरा है जिसके एहतराम में आप। अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, इंशाअल्लाह अगले बरस तक जिए और अपने अश्कों के जाम का पेश करें। दूसरी मुमासलत क्या है, मदीने में भी आग लगी है, करबला में भी आग लगी है, लेकिन यहाँ उस दर को आग लगाई है जहाँ रसूल 6 महीने तक आगे सलाम किया करते थे, और करबला में खयाम को आग लगाई है, यहाँ पर दरो दीवार के दरमियान जहरा जख्मी है, अरे कोई नहीं है जो जहरा को जल्द दरवाजे से निकाले, बस एक आवाज आती है या फिजा खुदीनी, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, फिजा मुझे थाम ले। और वहां इसी जहरा मुजाहिदा की बेटी ज़ैनब कुबरा जलते खेमों से सैयद सज्जाद को निकाल। अदादारो अरे यहाँ पर भी जनाजा उठा है, अरे करबला में भी जनाजे थे लेकिन फर्क है यहाँ अली मुर्तजा गुस्ल देते देते सर पे आब रख के रोते हैं, हाय फातिमा आपकी टूटी हुई पसलियाँ। एक मौका ये था, दूसरा मौका क्या था, एक दफा जब बुलंद गिरिया किए कफन देते हुए, जनाबे ज़ैनब ने पूछा बाबा आखिर क्या वजह है कि कफन देते हुए आप बुलंद आवाज से गिरिया कर रहे थे, एक दफा मौला ने कहा सीने से लगाया, ज़ैनब बेटा तेरी माँ का नील ज़दा बाजू, अरे जिसमें कुनफुस के तादियानों के निशान थे, अरे माँ का बाजू भी नीली सदा करबला में नबी जादियों के भी बाद अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بَارِ اللَّهِ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں ہماری بخشش ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے، ہمیں اس عذاب کے ذریعے سے امام الزمانہ کے ظہور کی راہیں